नमस्कार भारत, 1 मई दिन रविवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ सब लगे हैं, लेकिन उत्तराखंड की आग अब भी बेकाबू। क्यों भड़की इतनी आग?
चीड़ के पेड़ लगाए जाते हैं, चीड़ से लेसा उत्पादन होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके और भी दूसरे उसके जो घातक परिणाम है वो आग में जो है वो तो पेट्रोल की तरह का काम करता है।
प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस में बांटेंगे ई बोट, लेकिन अपने सांसद से क्या चाहती है बनारस की जनता?
दाल खरीदे जाए तो 200 रुपया किलो, तो ऐसे सरकार से हमके का लेना देना होगा जब हमें 200 रुपया दलवे खरीदे को ही, 25 रुपया 30 रुपया किलो अटवे खरीदे को ही।
इराकी संसद में घुसे हजारों लोग, मचाई तोड़फोड़, और होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन उससे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आग को काबू में करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है और एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। आग बुझाने में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। उत्तराखंड में वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और आग से उत्तराखंड के 13 जिले प्रभावित हुए हैं। राज्य में आग से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में एक हिंदू दर्जी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कहा है कि निखिल जोरदार तांगेल जिले में अपनी दुकान के बाहर काम कर रहे थे, जब 2 हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। निखिल जोरदार की पत्नी आरती रानी जोरदार ने हत्या के बारे में ये बताया। मैंने मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को देखा, उन्होंने उन्हें मार दिया और गड्ढे में छोड़कर चले गए। वो मोटरसाइकिल से भाग गए, मैं भागी और चिल्लाई कि कोई है, उन्होंने उन्हें मार दिया है। ये थे आरती रानी जोरदार के शब्द। बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले ही समलैंगिक विषयों के कार्यकर्ता और उनकी दोस्त की हत्या कर दी गई थी और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन में युद्ध में शामिल पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। इस बातचीत में यमन में 13 महीनों से चल रही लड़ाई को खत्म करने पर चर्चा हुई है। कुवैत में हुई बातचीत पर यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इस्माइल आउल्द चेख ने कहा है कि शुरुआत से उम्मीद बंधी है, लेकिन अब भी कई अड़चनें बाकी हैं। यमन सरकार और हूथी विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने पर सहमति जताई है, जिनमें विद्रोहियों के हथियार डालने और उनके नियंत्रण वाले इलाके छोड़ने का मसला भी शामिल है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा है कि बगदाद में स्थिति अब नियंत्रण में है। बगदाद में कल शिया प्रदर्शनकारी अति सुरक्षा वाले ग्रीन जोन का गेट तोड़कर संसद में घुस गए थे। शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थकों की मांग है कि गैर सरकारी विशेषज्ञों वाली कैबिनेट बनाई जाए और भ्रष्ट नेताओं को हटाया जाए। प्रदर्शनकारी संसद के बाहर कैंप लगाए हुए हैं। तुर्की में पुलिस ने कुर्द समर्थक एक टीवी चैनल के मुख्य समाचार संपादक को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आईएमसी टीवी के संपादक हमजा अक्तान से उनके ट्विटर अकाउंट के लिए से किए गए कुछ ट्वीट को लेकर 12 घंटे तक पूछताछ चली और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी की हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। बात उत्तराखंड की, जहां जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी इनमें कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। सेना, राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल यानी एनडीआरएफ, वायुसेना सभी इस काम में लगे हैं, लेकिन हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। स्थिति इतनी विकराल है कि अब तक 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन क्षेत्र तबाह हो चुका है। ये आग उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के जंगलों में फैली है। लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं, श्वास और दमे की शिकायतें बढ़ गई हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आग ये कैसे भड़की? इसके पीछे कोई भारी लापरवाही है या कोई और वजह? सुनिए देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
आग की इस दहकती आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के मध्य हिमालय के जंगल कैसे धू धू कर जल रहे होंगे। बेशकीमती वन संपदा देखते ही देखते राख और ठूंठ में बदल रही है और पिछले एक सप्ताह से ये सिलसिला अभूतपूर्व ढंग से तेज हुआ है। लोगों के खेत खलियानों और घरों के पास तक आग लपलपाती हुई पहुंच रही है। आखिर ये नौबत कैसे आ गई? क्या उत्तराखंड के जंगल इतने बेरहम हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों ने ही पाला पोसा है? जंगल की आग का किस्सा समझने के लिए हमने बात की ग्रामीण पृष्ठभूमि के अध्यापक लोकेश कुमार से, जो टिहरी जिले की घनसाली पट्टी के एक गाँव के निवासी है।
लकड़ी के अवैध व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं, जंगलों से बिना परमिशन के पेड़ काटते हैं, पेड़ काटने के बाद उसका व्यापार कर लेते हैं और उसकी जो जड़ें बसती हैं उन सब चीज़ों को आग लगा करके उनको तहस नहस करवा लेते हैं, तो साक्ष्य मिटा देते हैं। एक तो कारण इनका यह है। दूसरा कारण, दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो आबादी वाली जो ज़मीनें हैं या जो नाप लैंड होती है उसके पास में जो फॉरेस्ट की लैंड होती है वहाँ के पेड़ वेड़ काट करके उसको समाप्त कर देते हैं। पेड़ भी समाप्त हो गए, उससे भी फायदा हो गया और उन्होंने अपने सरकारी जो उसके फॉरेस्ट के पिलर होते हैं उनको पीछे हटा करके अपनी ज़मीनें वहाँ बढ़वा लेते हैं। तो इसमें ये कुछ ज़मीन माफिया टाइप के भी लोग हो जाते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं साहब जो जंगलों से जानवरों का, इस आग लगने के कारण जानवरों का जो है वो बसेरा समाप्त हो जाता है, वो गाँव की तरफ दौड़ते हैं या कहीं इधर उधर दौड़ जाते हैं, मर जाते हैं वो। उनके बाद वो जानवरों की भी जो हड्डी खाल और ये जो जितना भी उनको प्राप्त हो सकता है उससे भी अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए वो काम करते हैं।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है और शासन की बागडोर राज्यपाल के पॉल के हाथों में है। उन्होंने आग बुझाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस आपदा पर नियंत्रण के लिए अवैध कटान में संलिप्त शरारती तत्वों पर शिकंजा कसने के साथ ही जंगल से सटी आबादी द्वारा कूड़ा जलाने, वन क्षेत्र से गुजरने पर जलती बीड़ी, सिगरेट फेंके जाने और अच्छी घास के लालच में जंगल जलाने जैसी गतिविधियों के दुष्परिणामों के प्रति जनता को जागरूक करना होगा। लेकिन जनता को जागरूक कौन करेगा? जंगल की आग सिर्फ पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, वो देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को भी गिराती है, आम जनजीवन को प्रभावित कर। और ये जीवन कैसे प्रभावित होता है बता रहे हैं आग की चपेट में आए चमोली जिले के जोशीमठ में पेशे से चिकित्सक संजय डिमरी।
हर वर्ष वनाग्नि की वजह से उम्रदराज लोग, हृदय रोगी एवं सांस के रोगियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग मवेशियों के लिए चारे के लिए जंगल नहीं जा पा रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थित ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और शासन प्रशासन कोई प्रोएक्टिव स्टेप उठाने में असमर्थ है।
उत्तराखंड के आम लोग ही नहीं, देश भर में कई जगह लोग इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये कौन सी आग है जो सुदूर कुमाऊं के सीमांत पिथौरागढ़ जिले में ही भड़की है और उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर सीमांत उत्तरकाशी जिले के जंगलों को भी निगल रही है। सरकारी विशेषज्ञ जानते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में आग की बुनियादी वजहों में क्या क्या चीजें शामिल हैं, लेकिन वो इसे एक स्वाभाविक जंगल क्रिया मानते हुए आंकड़े जमा करते जाते हैं और पर्यावरण की चिंता कुछ चिंतित नागरिकों के हवाले हो जाती है। एक बार फिर सुनिए लोकेश कुमार को, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो सरकार के जानकारों को पहले से पता है।
इन जंगलों की आग को विकराल रूप करने के लिए जो ये चीड़ के जो पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ लगाए जाते हैं, चीड़ से लेसा उत्पादन होता है, अच्छी बात है, लेकिन उसके और भी दूसरे उसके जो घातक परिणाम हैं वो आग में जो है वो तो पेट्रोल की तरह का काम करता है। क्या ये सरकार को या हमारे पर्यावरण वालों को इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसकी जगह कोई ऐसे पेड़ लगाए जाएं जो आग के प्रसार को रोकें?
मध्य फरवरी से मध्य जून की इस सालाना अवधि में मिट्टी में नमी न्यूनतम स्तर पर होती है, लेकिन भारत में किसी और जगह की अपेक्षा हिमालयी पट्टी के जंगल ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इस आग में घी का काम करती है मानसून पूर्व की कम बारिश, चीड़ के पेड़, जंगल माफिया और सबसे बढ़कर प्रशासनिक मशीनरी की नींद, जो झटके से उठती है और फिर सो जाती है। शिव जोशी, BBC, देहरादून।
इस बीच उत्तराखंड में वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर MI-17 आज से आग बुझाने का काम शुरू कर रहे हैं। इनमें से एक हेलीकॉप्टर श्रीनगर गढ़वाल में तैनात किया गया है जबकि दूसरा कुमाऊं के नैनीताल में तैनात है। इन हेलीकॉप्टरों में करीब 4,000 लीटर की पानी की टंकी है जिससे वो आग बुझाने में मदद करेंगे। और उधर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार होने की वजह से कल संसद में इस मुद्दे पर तो हो हल्ला नहीं हुआ, लेकिन संसद के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। एक रिपोर्ट के साथ निखिल रंजन।
अगस्ता वेस्टलैंड और उसे जुड़ी इटली की कंपनी फिन मैकेनिका को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बोगस कंपनी बताया था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उनसे कई तीखे सवाल पूछे।
क्या श्री अमित शाह मोदी सरकार से पूछेंगे कि वो पिछले 2 साल से इन बोगस कंपनियों को क्यों संरक्षण दे रही है और क्यों सीबीआई और ईडी की जांच किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई? क्यों इन बोगस कंपनियों को प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया और एरो इंडिया एग्जीबिशन में शामिल किया गया? क्या श्री अमित शाह ये भी जवाब देंगे कि इस बोगस कंपनी को मोदी सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में एक सांझे समझौते के मुताबिक निवेश की अनुमति क्यों दी?
कांग्रेस ने आगामी 6 मई को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कल कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को ये बताना चाहिए कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सौदे में रिश्वत आखिर किसने ली थी,
कि पैसा किसने लिया है, उसका जवाब उस समय के सरकार को देना होगा। मुझे लगता है वो इन्वेस्टिगेशन से तय हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से डील हुआ है और जिस प्रकार से वो कंपनी को मदद करने की कोशिश की है, उसका जवाब देना पड़ेगा।
दूसरी ओर पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेसी नेता एके एंटनी ने मोदी सरकार को ये कहते हुए चुनौती दी है कि कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सबूत हैं तो उसे कार्रवाई करना चाहिए। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए एके एंटनी ने यह भी कहा कि हेलीकॉप्टर सौदे के बहाने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। पूर्व रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार ने हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत की बात सामने आने पर फिन मैकेनिका कंपनी को काली सूची में डाल दिया था। इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केरल चुनाव के लिए पार्टी का दृष्टिकोण पत्र जारी करते हुए कहा कि यूपीए के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड को कभी काली सूची में नहीं डाला गया था। उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सोनिया गांधी को कमजोर करने की मंशा है, सच जो भी होगा जांच में सामने आएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की इस बयानबाजी के बीच सीबीआई ने भारतीय वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख जेएस गुजराल से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। खबर है कि हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है।
ये थी निखिल रंजन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस का दौरा करने वाले हैं, जहां वे नाविकों को ई बोट्स बांटेंगे। लेकिन गंगा नदी में नाव चलाकर अपना जीवन यापन करने वाले मल्लाहों का मानना है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद बनारस में उनकी समस्याएं कम नहीं हुई हैं और नाव चलाने या फिर मछली पकड़ने के अलावा उनके पास रोजी रोटी का कोई दूसरा जरिया नहीं है। रोशन जायसवाल की बनारस से विशेष रिपोर्ट।
पिछली 4 पीढ़ी से नाविक के पेशे से जुड़े भूमि निषाद न केवल नाव चलाते हैं बल्कि गंगा के पार खेती भी करते हैं, पेट पालने के लिए मछली पकड़ते हैं और खाली वक्त में पर्यटकों का गाकर मनोरंजन भी करते हैं।
अरे गंगा मैया की महिमा अपार बारे, ए दुनिया ए सारा संसार जाने।
मौजूदा समय में मैली होती गंगा से भूमि काफी नाराज हैं। वे कहते हैं,
इतनी गंदगी हो रहा है गंगा जी में, पानी पीने लायक नहीं है, इसको सुधार करें, पहले नाला सुधार करें, फिर देश को सुधार करें। पहले मोदी जी, काशी का नाला है, बह रहा है, पहले उसको सुधार करें।
नाव से पर्यटकों को घुमाने के दौरान वाराणसी के नाविक गंगा किनारे पक्के घाटों और उनके इतिहास के बारे में भी सैलानियों को बताते हैं।
ये देखिए भैया, ये 80 घाट है, ये 80 नदी यहाँ बहता था, 80 नदी की वजह से इस घाट का नाम 80 घाट रखा गया। बगल में गंगा महल घाट, रीवा घाट या तुलसी घाट, तो गंगा महल घाट काशी नरेश का हमारे जो काशी के राजा उनका है, रीवा के महाराजा के रीवा घाट है। ये तुलसी घाट जो है तुलसीदास जी का है, जो कि तुलसीदास जी ने हिंदी में रामायण लिखा, उनके नाम से यह घाट बना गया है।
ये श्याम सुंदर हैं, जो कड़ी मेहनत के बाद भी अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और रही सही कसर महंगाई पूरी कर देती है। सरकार से नाखुश श्याम सुंदर कहते हैं कि बनी हुई 11 ई बोट में से एक भी किसी गरीब को नहीं मिलेगी।
दाल खरीदे जाए तो 200 रुपया किलो, तो ऐसे सरकार से हमके का लेना देना होगा, जब हमें 200 रुपया दलवे खरीदे को है, 25 रुपया 30 रुपया किलो अटवे खरीदे को है, बैगन खरीदे को 50 रुपया किलो। सरकार जब हमें कोनो सुविधा दे तभी तो हम सरकार के मानब। सरकार कोनो सुविधा देते नहीं हो, खाली सरकार अपन भौकाल बनी ले हो। जवन ये नैया मोदी सरकार बांटत हुआ वो कोनो गरीबन के न मिले सरकार, ये मिले पूंजीपतियन के।
यूं तो गंगा में मछली पकड़ने पर पाबंदी है, लेकिन कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय से जुड़े वाराणसी के रामनगर क्षेत्र के गरीब मछुआरों के पास रोजी रोटी का दूसरा जरिया नहीं है। अवधेश एक ऐसे ही मछुआरे हैं जो अपनी विकलांगता के साथ साथ अपने बड़े भाई रामनाथ की माली हालत से भी जूझ रहे हैं। वे बताते हैं,
चार पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं, हमको कोई काम धंधा भी नहीं है, कोई काम धंधा आता भी नहीं है, मछली मारते हैं इसी से हमारा जीविका चलता है। घर में 4 सदस्य हैं, मछली मार के मछली बेचते हैं, संजय 100-150 मिल जाती है।
पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप?
हम लोग को थोड़ा ध्यान दें, हम लोग उनको ध्यान दें, प्रशासन से भी थोड़ा मथुआ करें, छूट रहे हम लोग को दिक्कत न करें। हम लोग मछली मारते हैं तो दिक्कत करते हैं, आते हैं तो नाव 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 ले लेके दौड़ाते हैं।
खुद 3 पीढ़ी से नाविक और नाविकों के हक की बात करने वाले नौका धारक समाज के सदस्य विनोद निषाद की माने तो बनारस में 14,000 नाव मालिक और नाविक हैं, और इनके परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 50 से 60 हजार है, लेकिन उनका लगातार शोषण होता चला आ रहा है।
सन 1989 से हम लोग पर लगातार प्रहार होता जा रहा है, हम लोग को नाव चलाने में दिक्कत, नगर निगम हम लोग का लाइसेंस भी कभी कभी रोक देती है, और जेल पुलिस में कभी आज तक मल्लाह गोताखोर का भर्ती भी नहीं किया गया, और उसके बाद भी शासन और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना मिलती है हम लोगों को। वो परेशानी से हम लोगों को निजात चाहिए भाई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस के सांसद 1 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को ई वोट बांट रहे हैं, तो ई वोट लगाना है तो ऐसा उसको एक ऐसा प्रबंध करें कि भाई यहाँ पे 2,500 नावें हैं तो सब नावों में लग जाए, लेकिन हम लोग के पास पैसा नहीं है, न सरकार हम लोग को कभी राजकीय योगदान नहीं दिया है।
किसी मौसमी बेरोजगार की तरह वाराणसी के नाविक भी कभी मछली पकड़कर तो कभी खेती करके या तो फिर शहर में रिक्शा खींचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने को मजबूर हो चुके हैं। विकास के नाम पर नई तकनीक वाली नावें तो गंगा में दौड़ेंगी, जिसको चलाना किसी के लिए आसान भी होगा, लेकिन वक्त रहते अगर बनारस के नाविकों की सूद नहीं ली गई तो पारंपरिक नावें और पीढ़ियों से चला आ रहा रोजगार खत्म हो जाएगा।
ओ गंगा मैया, ओ सबकर मैया, अरे गंगा मैया की महिमा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस दौरा आज, आप सुन रहे थे रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। कार्यक्रम में आगे होगी अखबारों की समीक्षा, लेकिन उससे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों शिया कल संसद में घुस गए और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की। कट्टरपंथी शिया नेता मुक्तदा सदर के समर्थक ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मौजूदा कैबिनेट को भंग करें और इसमें गैर राजनीतिक लोगों को शामिल किया जाए। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि ऐसा कैबिनेट कम भ्रष्ट होगा। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
ये नारे इराक के शिया प्रदर्शनकारियों के हैं, जो राजनीतिक सुधारों के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी के वायदे पूरे न होने से नाराज हैं। इराक के संसद में जो नजारा पेश आया वो आम नहीं था। शिया मौलवी मुक्तदा अल सत्र के सैकड़ों समर्थक बगदाद में संसद के ग्रीन जोन का गेट तोड़कर संसद में घुस आए। ये लोग नई कैबिनेट का गठन न हो पाने से नाराज थे। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने संसद में लूटपाट की और हंगामा किया। हालांकि एक प्रदर्शनकारी ने बताया, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं और कुछ भी नहीं, भ्रष्ट और चोरों को इराकी संसद से बाहर किया जाना चाहिए। वहीं एक प्रदर्शनकारी अली मोहम्मद नेताओं की नाकामी से नाराज है। लोगों को सही जगह पर आना होगा, लोग संसद में धरना दे रहे हैं, हमारी वाजिब और एक ही मांग है, सरकार को बर्खास्त करके स्वतंत्र निष्पक्ष किसी भी गुट से संबंध न रखने वाले तकनीक विद लोगों का मंत्रिमंडल बनाया जाए। हम सरकार और उनके कोटे का विरोध करते हैं, जैसे ही लोग संसद में घुसे तो सांसद ग्रीन जोन के दरवाजों और दीवारों पर चढ़कर भाग गए। इराकी सरकार में कोटा सिस्टम से अयोग्य लोगों को नौकरियां देकर भ्रष्टाचार बढ़ाने का आरोप आम है। 2014 में जब आबदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने और देश में सांप्रदायिक तनाव को कम करने का वादा किया था। पिछले साल उन्होंने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ देश को एकजुट करने के मकसद से राजनीतिक सुधारों का ऐलान किया था। इन वायदों को लेकर अब तक आबदी का समर्थन करने वाले शिया मौलवी मुक्तदा सद्र नए कैबिनेट के गठन नहीं होने से नाराज हो गए हैं और आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। संसद पर घमासान से पहले उन्होंने कहा, जब लोगों को जिंदगी चाहिए तो किस्मत जवाब देती है और जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके मुताबिक काम करती है। लोग ही अपने भविष्य का फैसला करते हैं। कोटा प्रणाली और भ्रष्ट नेता हटेंगे या तो पूरी सरकार गिरा दी जाएगी और कोई नहीं बच पाएगा। इराक में भ्रष्टाचार और इससे निपटने में नाकाम सरकार के खिलाफ इराकी जनता की आवाज बनकर उभरे मुक्तदा सद्र 2003 में तब उभर कर सामने आए जब उन्होंने इराक पर अमरीकी हमले का विरोध किया। इराक से निर्वासन का जीवन बिता चुके मुक्तदा सद्र 2011 में इराक लौट आए थे। तब से उनके तेवर काफी नर्म पड़ गए हैं और वो इराक की एकता और शांति की पैरवी करते दिखते हैं।
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रही थी हरिता खांडपाल, इराकी संसद में घुसे हजारों शिया। और अब कार्यक्रम में बारी अखबारों की समीक्षा की। हरिता अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है। हरिता, क्या कुछ अखबारों में आज छपा है?
जी अशोक जी, आज अखबारों में कई खबरें हैं, मुख्य पृष्ठ पर छोटी छोटी बहुत सारी खबरें मैं देख रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक तस्वीर से शुरुआत कर रही हूँ। दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर सबसे पहले तस्वीर पर नजर पड़ती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऑकलैंड गए हुए हैं, न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे, अब ऑकलैंड में हैं। और इस तस्वीर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो हैं वो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल के साथ नाक रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये
वहाँ का चलन है,
ये वहाँ का चलन है,
जब मिलते हैं किसी से,
जी किसी से मिलते हैं तो वहाँ की स्थानीय माओरी परंपरा के मुताबिक जो है नाक रगड़ के, कोई दोस्त है तो वो इस तरह दोस्ती भी कबूल करता है और इसी तरह अभिवादन करता है। और ये तस्वीर जो है अलग अलग लोगों के साथ नाक रगड़ते हुए राष्ट्रपति की मैंने कई अखबारों में देखी है, तो दैनिक भास्कर में ये छपी है। इसके अलावा एक और संडे नव भारत टाइम्स में एक खबर छपी है, मोदी सरकार के दो साल में कुछ भी नहीं बदला। एक नया सर्वे आया है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ ने कहा है कि इसे एक सर्वे किया है जिसमें 62% लोग जो है पीएम की परफॉर्मेंस से खुश हैं, ये भी कहा गया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया है दो सालों में, ये भी कहा गया है।
इस महीने दो साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी सरकार,
जी मोदी सरकार
26 मई को
उन्होंने शपथ ली थी।
जी
संडे एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार ने एक खबर छापी है, गुजरात हॉस्पिटल विल स्टडी कपल्स विद ओनली गर्ल्स या ओनली बॉयज। चीफ मिनिस्टर गुजरात की मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक अध्ययन करवाना चाहती हैं। आनंदी पटेल ने कहा है कि जिन घरों में सिर्फ बेटियां होती हैं या सिर्फ बेटे होते हैं तो ऐसा क्यों होता है, और उसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि महिलाओं को बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है बेटे की चाहत में, तो वो जानना चाहती हैं कि इसकी क्या वजह है, तो इसके लिए एक अध्ययन वो करवाएंगी। एक और अच्छी खबर मैं पढ़ना चाहती हूँ, द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने छापी है, जम्मू कश्मीर में NIT छात्रों के बीच क्रिकेट को लेकर बहुत बवाल हुआ और काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन वहाँ से अच्छी खबर यह है कि क्रिकेट की वजह से ही अब वहाँ पर गैर कश्मीरी छात्रों और कश्मीरी छात्रों के बीच एकता देखने को मिल रही है।
झेलम के क्रिकेट खेल रहे हैं।
जी झेलम क्रिकेट लीग में एक टीम में कश्मीरी और गैर कश्मीरी छात्र साथ आ गए हैं, तो अब विवाद ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा संडे पायनियर ने छापा है कि ऑड इवन जो दिल्ली में चल रहा था वो खत्म हो गया है और सर्वे के बाद जो है तीसरा भी दिल्ली ऑड इवन का लाने की योजना है।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता तमाम अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। अभी तक अपने चारों प्रोफेशनल मुक्केबाजी मुकाबले नॉकआउट अंदाज में जीतने वाले भारत के विजेंद्र सिंह अपने पांचवें मुकाबले में कल फ्रांस के अनुभवी मैथियाउजे रॉयर के खिलाफ मुक्केबाजी रिंग में उतरे। विजेंद्र ने उन्हें भी नॉकआउट करते हुए लगातार पांचवी जीत हासिल की। रॉयर इससे पहले 44 प्रोफेशनल मुक्केबाजी मुकाबले खेल चुके थे, जिसमें से उन्होंने 3 नॉकआउट सहित 14 मुकाबले अपने नाम किए थे। 6 राउंड के पहले राउंड में दोनों मुक्केबाजों ने संभलकर शुरुआत की। रॉयर ने पूरे समय अपने दोनों हाथों से चेहरा ढांपे रखा, लेकिन इसके बावजूद विजेंद्र 2 अपरकट लगाने में कामयाब रहे। दूसरा राउंड शुरू होते ही विजेंद्र ने उनके बचाव के चक्रव्यूह को तोड़ दिया और तड़ातड़ लेफ्ट और राइट पंचों की बोछार रॉयर के चेहरे पर करते हुए उसे लाल कर दिया। विजेंद्र के एक पंच ने उनकी बाईं आंख पर खासा कट लगाया। तीसरे राउंड में तो रॉयर रिंग में विजेंद्र से दूर दूर रहे, लेकिन मौका पाते ही विजेंद्र ने 2 स्ट्रेट पंच जड़कर उनका मनोबल तोड़ा और राउंड समाप्त होते होते 1-2 पंच और जड़ दिए। चौथे राउंड में रॉयर कुछ आगे बढ़कर पंच लगाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन विजेंद्र बखूबी अपने आप को बचा गए। पांचवे राउंड की शुरुआत में ही विजेंद्र ने दमदार पंच लगाकर रॉयर को रिंग में लड़खड़ाने पर मजबूर किया। इसके बाद जब रॉयर उठे तो फिर विजेंद्र ने एक के बाद एक पंच जड़कर उन्हें अपने स्टाफ के पास जाकर मुकाबला रोकने पर मजबूर कर दिया। इस तरह रेफरी ने मुकाबले में विजेंद्र को विजेता घोषित किया। उधर भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल चीन के वुहांग शहर में आयोजित की जा रही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। कल 5वीं वरीयता हासिल साइना नेहवाल को 6ठी वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान ने 21-16, 21-14 से मात दी। उधर आईपीएल के पहले मुकाबले में कल दिल्ली डेयर डेविल्स ने अपने ही मैदान फिरोजशाह कोटला में खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराया। जीत के लिए 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय कोलकाता ने 17 ओवर में 6 विकेट खोकर 151 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद 18.3 ओवर में ही उसकी पूरी टीम 159 रनों पर ढह गई। आईपीएल 9 में ही कल खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 15 रनों से मात दी।
और अब वो खबरें जिन पर रहेगी आज नजरें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 1000 ई रिक्शा के अलावा नाविकों को सौर ऊर्जा से चलने वाली नौकाएं बांटेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली में आज से डीजल टैक्सियों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली टैक्सियों की रोक पर राहत देने से इनकार कर दिया है। मई दिवस के मौके पर दुनिया भर के कई बड़े शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। फ्रांस के पेरिस, ब्राजील के साओ पाउलो और रूस में मई दिवस के मौके पर रैलियों के आयोजन की तैयारी है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान भ्रष्टाचार के खिलाफ लाहौर में एक रैली करने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी जिनेवा में सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन डे मिस्टूरा से सीरिया में आंशिक युद्ध विराम पर चर्चा करेंगे। आईपीएल मैचों में राजकोट में गुजरात लायंस का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा, तो पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मैच होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सूखे के हालात को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में आईपीएल मैच कराने पर रोक लगाई थी, लेकिन बीसीसीआई की अपील पर हाईकोर्ट ने पुणे में आज ये मैच की छूट दे दी है।
और कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आग बुझाने के काम में सेना और एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। बांग्लादेश में एक हिंदू दर्जी की हत्या कर दी गई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हत्या की जिम्मेदारी ली, हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन में युद्ध में शामिल पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हुई है। इस बातचीत में यमन में 13 महीनों से चल रही लड़ाई को खत्म करने पर चर्चा की गई है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा है कि बगदाद में स्थिति अब नियंत्रण में है। बगदाद में कल शिया प्रदर्शनकारी अति सुरक्षा वाले ग्रीन जोन का गेट तोड़कर संसद में घुस गए थे। तुर्की की पुलिस ने कहा है कि कुर्द समर्थक एक टीवी चैनल के मुख्य समाचार संपादक को गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे मिलेंगे हम ठीक एक घंटे बाद। कार्यक्रम होगा विश्व भारती, कुछ और खबरें कुछ और विश्लेषणों के साथ। तब तक अशोक कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।